आतुरता तपस्या से, जीवन में आती है मधुरता तपस्या ही, जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले स्वर्ग सजा ले तू आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
ओम शांति। सबसे पहले भ्रातातम प्रकाश भाई जी का हम तालियों से स्वागत करेंगे। इनसे आपको परिचित कराना चाहूंगी। भ्रातातम प्रकाश भाई जी ने ज्ञान नागपुर महाराष्ट्र से 1972 में प्राप्त किया है और नागपुर विश्वविद्यालय में 73 में एमएससी में आप गोल्ड मेडलिस्ट है। लौकिक पढ़ाई एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट है। 1976 से माउंट आबू मुख्यालय में अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवाओं में आपने समर्पित किया है। भारत के सभी प्रांतों में ईश्वरीय सेवार्थ आपने भ्रमण किया है और राजयोग पर क्लासेस कराए हैं। इनका विशेष मनन चिंतन राजयोग पर है और पूरे भारत भर में जो अपने बीके भाई बहनों के भट्टियां होती है तो भट्टियां कराने अर्थ पूरे भारत में आपने भ्रमण किया है। रेडियो और दूरदर्शन पर आपके इंटरव्यू समय प्रति समय प्रसारित होते रहते हैं। आपकी विशेषज्ञता राजयोग का गहन अध्ययन स्वयं करना और दूसरों को कराना। आपने विश्व के पांचों महाद्वीप अर्थात अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया के 61 देशों का भ्रमण करके ईश्वरीय संदेश तथा राजयोग की शिक्षाएं देकर अनेक आत्माओं को लाभान्वित कराया है और आप युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक है एवं मधुबन, ज्ञान सरोवर तथा शांतिवन तीनों परिसरों में आप टोली विभाग संभालते हैं। तो आज भी विशेष भ्राता जी हमको ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति हम कैसे बनाएं उसके ऊपर हमको बताएंगे। पिछले वर्ष बाबा खास हमको इसके लिए बताते रहे हैं कि किस प्रकार हम योग तपस्या भी ज्वाला स्वरूप होकर के करें ताकि हमारे सारे विकर्मों को उसमें हम दग्ध कर सके। तो अभी हम सुनेंगे भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी से। ओम शांति।
ओम शांति। ज्वाला स्वरूप योग का अभ्यास करना वर्तमान समय बाबा का विशेष इशारा है कि अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है वो विशेष ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। इसके पीछे क्या राज है? सबसे पहला कारण ये है कि हम सभी प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, मुरली सुनते हैं, फिर भी हम अपने पुराने कठोर संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। हमें अड़ोसी पड़ोसियों से कमेंट मिलता है कि आश्रम में जाते हो, योग का अभ्यास करते हो, फिर भी अभी तक चिड़चिड़ापन आप में है, गुस्सा है, फीलिंग की बीमारी है। इसका कारण ये है, प्रतिदिन योगाभ्यास करने के बाद भी हमारे कठोर संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। तो वो कठोर संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए एक ही रास्ता है, ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाना। दूसरा कारण है, बहुत जल्दी ही हम सभी को मनसा सेवा बहुत करनी है, अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देना होगा। इसलिए हमारे पास शक्तियों का स्टॉक भरपूर मात्रा में होना जरूरी है। जितना शक्तियों का स्टॉक होगा उतनी आत्माओं की हम बेहद की सेवा करते जाएंगे। मनसा सेवा करने का गोल्डन चांस हमें मिलेगा। हम बाबा के पास आए हैं आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। योगाभ्यास करना अर्थात आत्मा की बैटरी को चार्ज करना। अब कितने सालों से कर रहे हैं? कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 25 साल से कर रहा है, फिर भी ये बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। कारण क्या है? कारण ये है, अमृत वेले और शाम के योगाभ्यास से हम थोड़ी सी शक्तियां प्राप्त करते हैं और वो खर्च भी सारे दिन भर में करते हैं। जितना कमाते हैं उतना खर्च कर लेते हैं। अभी बैटरी को चार्ज तेजी से करना है तो शक्तिशाली योगाभ्यास से बहुत शक्तियां प्राप्त करते जाएंगे, तो एनर्जी लेवल हमारी बढ़ती जाएगी, तो आत्मा संपन्नता की अनुभूति करेगी, उसके बाद संपूर्णता की अनुभूति करेगी। बैटरी चार्ज करने का हमें एक ही बार सारे कल्प में चांस मिलता है और अभी बहुत थोड़ा समय बाकी है। बाबा का बार बार इशारा हमें मिल रहा है कि समय बहुत कम है, पुरुषार्थ के कदम तेजी से उठाने जरूरी हैं। तो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को हमें बढ़ाना ही होगा, दूसरा पर्याय उसके लिए नहीं है। तो बढ़ाना तो हम चाहते हैं, ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करना तो हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना जरूरी है? सचमुच अगर ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करना चाहते हैं तो 5 बातों पर आपको जिगरी मेहनत करनी होगी। तो गारंटी है आपका योगाभ्यास दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनता ही जाएगा। पहली बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को अनुभव करने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। शक्तिशाली और गहराई की आत्म अनुभूति, गहराई की आत्म अनुभूति अर्थात हम आत्मा में खो जाएं, देह का भान बिल्कुल न रहे, केवल मैं चमकता हुआ सितारा हूं। ये वस्त्र प्रकृति का है, इसको हमें भूल जाना है, पूर्णतया भूल जाना है। बाबा कहते हैं नंगे आए थे और नंगे जाना है। नंगे अर्थात न अंगे, आत्मा बिंदी आई थी और न अंगी, बिंदी वापस जाएगी घर। तो बहुत गहराई की आत्मिक स्थिति को हमें बढ़ाना है, देह के भान को बिल्कुल भूल जाना है, न्यारे हो जाना है। और शक्तिशाली आत्म अनुभूति अर्थात आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज जितना जास्ती होगा, उतना जो पावर हाउस बाबा हैं उनसे बहुत शक्तियां आत्मा स्वतः ही अपने में भरती है, खींचती है। साधारण मैं आत्मा हूं समझेंगे तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज साधारण होगा और बहुत थोड़ी सी शक्ति हमें बाबा से, ज्ञान सूर्य से मिलेगी। इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, इस पावरफुल भान में हमें बैठना है, तभी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें हो सकती है। केवल आत्मा नहीं लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे पावरफुल कॉन्शियस में हमें अमृत वेले या नुमा शाम के समय बैठना है। तो स्वतः ही बाबा से बहुत कुछ शक्तियां आत्मा में हम खींच सकते हैं, भर सकते हैं। दूसरी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात परम धाम में हम बाबा के पास जाए, बहुत समीप जाए और बहुत समीपता से बाबा के स्वरूप को देखें कि बाबा का कैसा गजब का स्वरूप है, सत्यम शिवम सुंदरम, कितना प्यारा बाबा का स्वरूप है। और बहुत समीपता से बाबा के मन को देखें, बुद्धि को देखें, बुद्धि कैसी पवित्र है, दिव्य है और संस्कार कितने रॉयल हैं, पर्सनालिटी कितनी गजब की है। बहुत नजदीक जाकर बाबा के स्वरूप को निहारे, देखें, अनुभव करें बहुत समीपता से। जैसे चकोर जो है पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता है और झूमता रहता है, ऐसे बाबा ज्ञान सूर्य हैं और हम आत्मा सूरजमुखी हैं और हम सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य को देखते रहें, देखते रहें और उनकी शक्तियों को अपने में भरते रहें। कहते हैं तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूं पिया, न देखूं तुझे तो लागे नहीं जिया। एक पल भी मैं अगर आपको नहीं देखती हूं तो मेरा जिया लगता नहीं। तो ऐसे हमें बाबा के स्वरूप को बहुत समीपता से देखना है और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति अर्थात जैसे अर्जुन ने भावना में आकर वर्णन किया है, परमात्मा का स्वरूप जो है हजारों सूर्य से तेजो में है, शक्तिशाली है। भावना में आकर वो वर्णन कर रहे थे। इसका मतलब बाबा ज्ञान सूर्य तो हैं, लेकिन बाबा के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से प्रखर रूप में परम धाम में हमें देखना है और अनुभव करना है। बिंदी तो हैं बाबा, आत्मा भी बिंदी है, लेकिन कितनी वो पावरफुल बिंदी हैं, उस बिंदु में सात सिंधु समाये हैं, सात सागर समाये हैं। आप सोचो कितनी वो पावरफुल बिंदु होगी। तो ऐसे पावरफुल स्वरूप में हमें बाबा के स्वरूप को परम धाम में बहुत अच्छी तरह से देखना है और अनुभव करना है। बस देखते ही रहे बाबा जैसा सुंदर, इनो तीनों जहां में कोई भी नहीं है। सदा सुंदर, परम सुंदर, एवर प्योर, एवर ब्यूटीफुल, एवर स्मार्ट, एवर ग्रीन, बस वो बाबा ही है, उसका ही गायन है परम सुंदर। तीसरी बात है, ज्वालामुखी योगाभ्यास के लिए हमारे दिल में केवल परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, बस बहता ही रहे। परमात्म प्यार का झरना निरंतर हमारे दिल में सदा बहता रहे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें ये रियलाइज करना होगा, ये दुनिया में केवल दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर। ये दो चीजें हैं, केवल ईश्वर और नश्वर चीजें हैं। हमने देखा नश्वर चीजों से हमें कुछ प्राप्ति नहीं होती है, ईश्वर ही सर्व प्राप्तियों का खजानों का भंडार है। इसलिए केवल हमें ईश्वर से ही प्यार करना जरूरी है। परमात्मा केवल प्यार का सौदागर है, केवल प्यार का सौदागर, पक्का सौदागर है। तो परमात्मा से हमें क्यों प्यार करना जरूरी है? उसका रियलाइजेशन हमारे पास होना जरूरी है। मुरली में सुन लिया ठीक है, किसी ने कह दिया ठीक है, लेकिन अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि मेरे पास जो दिल की प्यार की पूंजी है वो मुझे भगवान के पास सौंपना है। बस प्यार का सौदा उसके साथ ही करना है, किसी भी व्यक्ति वैभव के साथ मुझे नहीं करना है। पांच बातें लिखो, परमात्मा से क्यों मुझे प्यार करना है। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में हमने कितने धोखे द्वापर युग से खाए हैं, कितने कड़वे अनुभव किए हैं। माया के पांच खिलाड़ियों ने हमें फुटबॉल बना के ऐसा बुरी तरह से लताड़ा, इतने हम थक गए हैं जो अभी हमें आत्माओं से प्यार नहीं करना है, केवल परमात्मा से ही है। उनका ही प्यार विश्वास पात्र प्यार है। दूसरी बात है, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है। आत्माओं का प्यार विनाशी है। जहां स्वार्थ है, स्वार्थ पूरा हो जाता है, कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। केवल परमात्मा का प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, अविनाशी प्यार है। आत्माओं का तो अल्पकाल का है और विनाशी प्यार है। परमात्मा का तो बेहद का प्यार है, अविनाशी प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। इसलिए परमात्मा को पालनहार कहते हैं। जो जन्म देते हैं माँ बाप, उनको पालनहार नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका भी पालना के पीछे स्वार्थ होता है। केवल संसार में परमात्मा ही ऐसे हैं जो हमें निस्वार्थ प्यार देकर पालनहार अर्थात पूजनीय बनाते हैं, हार पहनाने के लायक बनाते हैं। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में कितने कॉम्प्लिकेशंस, कितने कंडीशन हैं, आए दिन हम देखते हैं, कोर्ट कचहरी के धक्के खाते हैं, डाइवर्स देते रहते हैं, लेकिन परमात्मा का प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए भोली भोली माताएं भी उनके दिल को जीत लेती है प्यार करके, प्यार का सौदा करके, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, आत्माओं के प्यार तो हमें इम्प्योर बनाता है। केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से हाईएस्ट और होलीएस्ट स्थान पर ले जाता है, टॉप फ्लोर पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इस घटिया दुनिया में ही भटकाता रहता है। इसलिए मुझे भगवान से प्यार करना है, भगवान को भगवान कहते हैं। क्यों कहते है भाई, दूसरा नाम क्यों नहीं पड़ा भगवान को, बोलो क्यों भगवान ही कहते हैं उनको, बोलो भाई लोग, दूसरा नाम ही नहीं है, केवल भगवान ही नाम है उनका। उसका गुह्यराज ये है, कहते हैं दुनिया में ये धनवान है, ये रूपवान है, ये आशावान है, ये गुणवान है, और ये क्या है, भगवान। सबको भगा कर ले जाने में नंबर वन उस्ताद है। तालियां तो बजाओ, कोई है ऐसा सारे संसार में सबको भगाकर बुद्धि को ले जाता है और कहता है मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मेरे पास उल्टे फांसी पर लटके रहो, बुद्धि वहां लटका के रखो, तो भगवान हमें भगाकर ले जाता तो है और लेकिन सारे खजाने दे देता है। इसलिए उनका नाम भगवान पड़ा है। तो बाबा का प्यार, बाबा से प्यार हमें बहुत अच्छी तरह से करना है। इस संसार में जो आठ रतन हैं वो है भगवान के दीवाने, उनको कोई सुस्ता ही नहीं है, भगवान के रग रग में उनके परमात्मा का प्यार है। वो आठ मेरिट आत्माएं हैं और 108 फर्स्ट क्लास आत्माएं हैं, 16,000 सेकंड क्वालिटी के और 9,00,000 थर्ड क्वालिटी की हैं। मेरा नंबर कहाँ है, मेरा कितना प्यार उस परमात्मा से है, ये हमें एकांत में बैठकर सोचना है। प्यार में ऐसी ताकत है, ऐसा पावरफुल मैग्नेट है, हजारों मील पर बाबा जो है बैठे परम धाम में, इस दूरी को समाप्त करके एकदम हमें आमने सामने की अनुभूति कराता है, कंबाइन अनुभूति कराता है। यह है प्यार की शक्ति। योगी अर्थात प्रभु के पागल प्रेमी, उनको कोई सोचता ही नहीं है, प्रभु के बिना वो बेचैन होते हैं। इनके दिल में, उनके संग में, उनके संकल्प में बस बाबा ही बाबा समाया रहता है। दुनिया वालों ने गीत बनाया आशुक और माशुक के रूप में, आशुक मेल फीमेल, भाई तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी सुंदर हो, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे में क्या देखूं। बाबा तुम इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, आपके चेहरे से मेरी नजर ही नहीं हटती है, ये दुनिया के नजारे में क्या देखूं, ये तो सारा असार संसार है, नीरस दुनिया है, सर्व रसों का भंडार, सर्व प्राप्तियों का भंडार आप ही हो बाबा। बस बाबा को देखते रहे, परम धाम रूपी पीस पैलेस में बैठकर बाबा की सुंदर छवि को निहारते रहे और हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना बहता रहता है, तो बहुत सुंदर गहन अनुभूतियां हमें योगाभ्यास में होते हैं। बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं, जब प्यार के सागर में हम समा जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, तो एक तरफ प्यार के सागर हैं, दूसरी तरफ शक्तियों के सागर हैं, तो प्रेम स्वरूप याद ऑटोमेटिक शक्तिशाली याद में, ज्वाला स्वरूप याद में स्वतः ही कन्वर्ट होती हैं। इसलिए हमें लवफुल स्थिति को बहुत अच्छी तरह से हम अनुभव करना है, समा जाना है, प्रभु प्रेम में लीन हो जाना है। शिव मैं जैसे मेरा कृष्ण मैं बन चुके थे, हमें शिव मैं बन जाना है, शिव के दीवाने बन जाने हैं। चौथी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए हमारा मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से एकदम भरपूर हो, ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से मन बुद्धि जब भरपूर होती है तो परमात्म मिलन का जो मजा है वो कुछ और होता है। उस मिलन में इतने गहन और इतने सुंदर इतने शक्तिशाली अनुभव हमें होते हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते हैं। किसी को भी अगर हम मिलते हैं अंदर में खुशी नहीं है नशा नहीं है तो मिलने वाला सामने वाला व्यक्ति हमारी आंखों में पड़ता है, केवल डिप्लोमेटिक रीति से ऊपर ऊपर प्यार से आप मिल रहे हो हमारी आंखों में पड़ लेता है। तो भगवान के साथ जब हम मधुर मिलन मनाते हैं तो उस समय हमारे मन बुद्धि एकदम ईश्वरीय नशे में और ईश्वरीय खुशी में झूमते रहे। उसके लिए हमें क्या करना जरूरी है, सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर बैठना है और बहुत अच्छी तरह से ईश्वरीय नशे की और ईश्वरीय खुशी की अनुभूति करते रहना है। ईश्वरीय नशा दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ता ही जाए, ये है उन्नति की निशानी। एक वर्ष पहले जो नशा था जो खुशी थी वो बढ़ चुकी है, इसका मतलब आपकी उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, इस ज्ञान मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये उसकी निशानी है। क्योंकि जैसी प्राप्तियां बढ़ती हैं, उपलब्धियां बढ़ती हैं, जो कमाई बढ़ती है तो ऑटोमेटिक चेहरे पर वो नशा खुशी दिखाई देती है, नहीं तो चेहरा गरीब रहता है, नशा ही नहीं खुशी नहीं है। राजा महाराजा जो बनने वाली आत्माएं होती हैं उनके चेहरे पर उनकी आंखों में वो फकूर वो बेपरवाह बादशाह का नशा, जैसे ब्रह्मा बाबा की आंखों में शुरू दिन से नारायणी नशा था, उसी नारायणी नशे ने बाबा को अपने संपूर्णता के निशाने तक बहुत शीघ्रता से ले लिया। इसलिए इस यात्रा में प्रेम की मात्रा भी हमें बढ़ाना है और ईश्वरीय नशे का भी परसेंटेज बढ़ाना है, तो इस याद की यात्रा में भरपूर आनंद भी लेते रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से उन्नति भी आप करते रहेंगे। पांचवी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ हमें बैठना है और पूरी एकाग्रता के साथ बैठना है। दृढ़ता के साथ अर्थात अमृत वेले जब हम योगाभ्यास में बैठते हैं तो हमारा दृढ़ संकल्प हो कि आज मुझे किसी भी हालत में ऐसी ज्वाला स्वरूप की स्थिति को अनुभव करना ही है, ऐसे दृढ़ संकल्प से बैठेंगे तो वो अनुभव आपको होके रहेगा। क्योंकि बाबा ने कहा है सफलता है दृढ़ता की परछाई, जितनी दृढ़ता उतनी सफलता हमें मिलती है। तो दृढ़ता से हम पूरी बैठें और बहुत मस्ती से बैठें तो जरूर हमारे योगाभ्यास में गहन अनुभूतियां हमें होती रहेगी। लेकिन इस ज्वाला स्वरूप योग का जो सीक्रेट है वो समझना जरूरी है। सीक्रेट ये है कि इस योग की प्रक्रिया में पूर्णतया एकाग्रता होना जरूरी है, एकाग्रता। उदाहरण स्पष्ट है, कागज का टुकड़ा मुझे सूर्य की रोशनी में जलाना है, सूर्य की रोशनी कितनी भी प्रखर है लेकिन कागज के टुकड़े को वो डायरेक्ट नहीं जला सकती। उसके लिए हमें मैग्नीफाइंग लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, सूर्य की रोशनी में बैठना पड़ता है, कागज के ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ते हैं, सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, वो किरणें उससे जब पास होती हैं, बहुत प्रखर किरणें होती हैं, और वो प्रखर किरणें एक बिंदु पर एकाग्र होती हैं, तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अग्नि का रूप लेती है, और वो सेकंड में पेपर राख हो जाता है। इसी ज्ञान सूर्य बाबा हैं, उनकी रोशनी में हम बैठते हैं, बुद्धि का नेत्र बाबा को देखता है, तो बुद्धि रूपी लेंस से जो किरणें निकलती हैं, वो जब पास होती हैं, वो बहुत शक्तिशाली होती हैं, और जब बीम लेजर बीम की तरह शक्तिशाली किरणें आत्मा पर पूरी एकाग्रता के साथ पड़ती हैं, तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, योग की ज्वाला धधकने लगती है, और उस योग की ज्वाला में हमारे पूर्व जन्मों के कठिन संस्कार, कठोर संस्कार मेल्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ये है इस योगाभ्यास की सीक्रेट। और हम सभी ने ऐसी एकाग्रता के साथ हर कल्प योगाभ्यास किया है, शास्त्रों में उसका बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं। द्रोणाचार्य गुरु जी अर्जुन को धनुर्विद्या का सिखा रहे थे, सहपाठी भी थे, वो एक दिन उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए, वृक्ष पर उन्होंने आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और लक्ष्य दिया, उस वृक्ष की पर जो पंछी है उसकी आंख की काली पुतली है, जो आई बॉल है उसको तीर मारना है, ये लक्ष्य दिया। सहपाठी को बुलाया, आओ इधर, क्या दिखाई देता है? हाँ, पंछी भी दिखाई दे रहे हैं, आंख भी दिखाई दे रहा है, पुतली भी दिखाई दे रही है। अर्जुन, आओ इधर, बताओ क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल वो पुतली ही नजर आ रही है, आंख भी नहीं, पुतली ही नजर आ रही है। उसने तीर मारा, उसने तीर भेदा और पास वितानर हो गया। कोई अर्जुन होकर नहीं गया है, ये अर्जुन बैठे है बाबा के बच्चे। हर कल्प हमने ऐसी एकाग्रता से अभ्यास किया है, इसलिए हमें पूरी लगन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ ऐसा योगाभ्यास करना है ताकि हमारे पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, वो एकदम मेल्ट हो जाए, फ्री हो जाए। विष्णु अर्थात विष्णु अंश मात्र भी विष आत्मा में न हो, जहर न हो, पॉइजन विकारों का न हो, वो तभी हो सकता है आत्मा को उस योग अग्नि में एकदम तपा दे, ज्ञान सूर्य की तपत में एकदम तपा दे, गला दे। ये केवल ब्रह्मा बाबा की यादगार नहीं है, विष्णु वंशावली में हमें भी जाना है, तो हमें भी ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करना है। अमृत वेले या शाम के समय ऐसा शक्तिशाली बैठक का योग करना ही है, ऐसा हमारा लक्ष्य हो। चलते फिरते हमें भले फरिश्ता स्वरूप कर्म योगी का स्थिति अनुभव करना है, लेकिन बैठक के योग में ऐसी पावरफुल स्थिति हमें बनाना ही है। अभी कोई उस दूसरा चॉइस ही नहीं है, समय की पुकार यही है। दुनिया की हालत को हम देख रहे हैं, बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है, इसलिए कल्याणकारी बाप चाहता है कि मेरा हरेक लाल जो है वो माला माल हो जाए और एकदम शक्तियों से भरपूर हो जाए। इसलिए ड्रामानुसार आप सभी महान आत्माओं को ये गोल्डन चांस मिला है, ये लॉटरी मिली है, ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर योग की तपस्या करने का ये गोल्डन चांस मिला है। ये जो विश्व का ग्लोब है, इस ग्लोब पर ये मधुबन ऐसा स्थान है, एकदम पावरफुल स्थान है, हाईली चार्ज है। इस स्थान पर जो योग की गहन अनुभूतियां होती हैं, दुनिया के किसी भी स्थान में नहीं हो सकती है, ऐसा इस स्थान को वरदान बाबा ने दिया है। तो बहुत सुंदर इस जो हमें लॉटरी मिली है उसका भरपूर लाभ लेना है और बहुत सुंदर अनुभूतियों का स्टॉक हमें लेकर जाना है। जितनी अनुभूतियां यहां करेंगे आपके कर्म क्षेत्र पर आप उनको रिपीट करेंगे और अच्छी तरह से बढ़ाएंगे तो आपकी स्थिति का स्तर ऊंचा उठता जाएगा। समझा? तो इसलिए ये जो चांस मिला है उसका भरपूर लाभ आपको लेना है, क्योंकि अभी बाबा की विशेष हमें प्रेरणा मिल रही है कि अनुभव की अथॉरिटी बनना है। कितने साल ज्ञान में चल रहे हैं वो बात मायना नहीं रखती है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि आपके पास कितने अलौकिक अनुभूतियों का धन इकट्ठा हुआ है। इस ब्राह्मण संसार में सबसे धनी वो हैं जिन्होंने पास अलौकिक अनुभूतियों का धन प्रचुर मात्रा में है। इसलिए हमें अलौकिक अनुभूतियों का धन बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में चलने के बाद अनुभव कोई भी करना चाहते हैं तो अणु प्लस भव, जब तक स्वयं को अणु अर्थात बिंदु नहीं समझेंगे तब तक कोई भी आपको अनुभव नहीं हो सकता है। ये कंडीशन है, मैं अति सूक्ष्म अणु हूं, बिंदु हूं, सितारा हूं, उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो इतना आपको सुंदर अनुभव होता जाएगा जिसके बात मत पूछो। अनुभव की खान मिल जाएगी आपको, अनुभव की वर्षा आप पर होती जाएगी। इसलिए मुझ आत्मा के पास बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव का स्टॉक बढ़ता रहे, ये मेरी कमाई बढ़ती रहे, ये लोभ हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें मेहनत बहुत अच्छी तरह से करते ही रहना है। समझा क्या? तो इसलिए एकांत में बैठकर खुद में खो जाएं, खुदा में खो जाएं और अनुभूतियों में खो जाएं, बहुत अच्छी तरह से आनंद भरपूर लेते रहें। ठीक है? अनुभवी आत्मा मैं हूं या नहीं कैसे पता चलेगा? अनुभवी आत्मा की पांच निशानियां हैं, वो आपके जीवन में चेक कर सकते हैं आप। अनुभवी आत्मा की पहली निशानी है उसके चेहरे पर नारायणी नशा दिखाई देगा। जैसे दुनिया में जो धनवान होते हैं, धन घर में न होगा, बैंक में होगा, लेकिन चेहरे पर धन का नशा दिखाई देता है कि मैं धनवान हूं, तो ऐसे अनुभवी जो आत्माएं होते हैं उनके चेहरे पर नारायणी नशा स्वतः ही दिखाई देता है। उनके जीवन में संतुष्टता और संपन्नता की निशानी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके चेहरे पर संपन्नता और संतुष्टता हर कोई पढ़ लेता है। दूसरी निशानी है अनुभवी आत्मा जो है हमेशा उसका जीवन रोचक और रोमांचित रहता है, एकदम इंटरेस्टिंग रहता है। क्योंकि हम देखते हैं ज्ञान में कोई आते हैं, दो पांच साल चलते हैं, बाबा के पास आते हैं और वो चले जाते हैं दूर, उसका कारण क्या है? अनुभव की कमी। लेकिन जो अनुभवी आत्मा होता है वो अनुभव के आधार से अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से उमंग उत्साह को मेंटेन करता है, न्यूनेस को मेंटेन करता है और दिन प्रतिदिन जो है आगे ही आगे संपूर्णता के शिखर की ओर चला जाता है। रोचक रोमांचित उसका जीवन होता है। तीसरी निशानी है अनुभवी आत्मा जो है दुआओं के पात्र बनता है, जो अनुभव दूसरों के साथ शेयर करता है तो दूसरों को भी ऐसे श्रेष्ठ अनुभव करने का साहस आत्मविश्वास मिलता है और वो आगे बढ़ता है। जितनों को वो आगे बढ़ाता है उतनों की दुआएं उसको मिलती हैं स्वतः ही। चौथी निशानी है अनुभवी आत्मा कभी भी माया से धोखा नहीं खाता है। अनुभव का स्टॉक होने के कारण वो माया को अच्छी तरह से जानता है और हर परिस्थिति में माया के साथ रहते हुए भी विजयी बनकर जाता है। कहते हैं अनुभव की पूंजी सफलता की कुंजी, जितनी अनुभव की पूंजी बढ़ती जाती है वो सफलता के शिखर पर बहुत अच्छी तरह से आगे ही आगे बढ़ता जाता है। समझा? तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव को, अलौकिक अनुभूतियों को बढ़ाते जाना है। तो अभी हम बहुत अच्छी तरह से 15 मिनट इतना पावरफुल योग का अभ्यास करेंगे, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करेंगे। तो सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे। कॉपी पेंसिल हटा के बिल्कुल फ्री होके बैठेंगे, चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस स्वदेह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों फैल रहा है। मुझ आत्मा के चहुओर सुंदर आभा मंडल लाइट का औरा अनुभव हो रहा है। मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूँ, शांति का प्रकाश शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूँ। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस विश्व के ग्लोब पर चमकता हुआ चैतन्य सितारा विराजमान हूँ। दिव्यता की रोशनी फैला रहा हूँ। मैं आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूँ। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया, सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुस आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर है यह हल्की फुल्की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस। फरिश्तों की बादशाह, मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूँ। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूँ। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह कितनी न्यारी और प्यारी है यह निराकारी दुनिया। सफेद ही सफेद, चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, प्यारा शांति धाम। ओह मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबल, मेरे समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में बस बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। ज्ञान सूर्य बाबा से शक्तियों की प्रखर किरणें, तेजस्वी किरणें, शक्तिशाली किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं। योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पांव दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से अनुभव कर रही हूँ, खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। शक्तियों के सागर से निरंतर शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में ब्रुकटी की अकाल तत्व पर, सोमान के सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। शक्तियों की किरणें इस वायुमंडल में फैल रही है।
देव पद पर